एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे, कह सकते हैं, विशाल और बहुत प्रभावशाली ग्रंथ पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसी किताब जिसने न सिर्फ अपने समय में तहलका मचाया, बल्कि देखिए आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एडवर्ड गिबन की महान कृति द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर की, मतलब रोमन साम्राज्य के पतन और विनाश का इतिहास। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, आप समझिए ये एक पूरी सभ्यता के उतार चढ़ाव का आईना है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि लगभग 1500 साल पहले, मतलब जो साम्राज्य खत्म हो गया, उसकी कहानी आज हमारे लिए क्यों मायने रखती है? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें इतिहास में बहुत रुचि है?
ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है। गिबन हमें दिखाते हैं, देखिए कि कैसे महानता के शिखर पर पहुंची सभ्यताएं भी वो अंदरूनी कमजोरियों का शिकार हो सकती हैं।
अच्छा,
हाँ, कैसे सफलता ही कई बार पतन का कारण बन जाती है, और कैसे, मतलब, नैतिक मूल्यों का पतन और संस्थाओं का खोखलापन किसी भी समाज को बाहरी झटकों के सामने एकदम लाचार बना सकता है। ये बातें आज भी उतनी ही सच हैं।
तो चलिए सबसे पहले उस शख्सियत को जानते हैं जिन्होंने इतिहास के इतने बड़े फलक को अपनी लेखनी में समेटा, एडवर्ड गिबन। कौन थे ये और क्या खास थे इनके नजरिए में?
एडवर्ड गिबन 1737 से 1794, ये 18वीं सदी के इंग्लैंड के एक इतिहासकार थे, लेखक थे और कुछ समय के लिए सांसद भी रहे। और दिलचस्प बात यह है कि वो आज के जैसे कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं थे।
ओह अच्छा।
हाँ, बल्कि एक स्वतंत्र स्कॉलर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के, आप मानिए, 20 साल से ज्यादा सिर्फ इसी एक किताब को लिखने में लगा दिए। वो एनलाइटनमेंट यानी प्रबुद्ध काल के व्यक्ति थे जहां तर्क और विवेक पर बहुत जोर था।
हाँ हाँ मैंने सुना है ऑक्सफोर्ड में उनकी पढ़ाई तो बहुत जल्दी खत्म हो गई थी, लेकिन असली ज्ञान उन्हें अपनी यात्राओं से और खुद के अध्ययन से मिला, खासकर 1764 में जब वो रोम गए और वहाँ कैपिटल हिल के खंडरों को देखा। कहते हैं वहीं उन्हें ये महान किताब लिखने की प्रेरणा मिली।
जी बिल्कुल,
और भाषाओं पर भी उनकी पकड़ जबरदस्त थी, शायद लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इतालवी।
हाँ हाँ सब जानते थे, इससे वो मूल स्रोतों तक पहुंच सके, यही उनकी खासियत थी। और उनके नजरिए की बात करें तो पहली बात उनका प्रबुद्ध दृष्टिकोण। उन्होंने घटनाओं की व्याख्या के लिए, आप देखिए, दैवीय चमत्कारों या भगवान की मर्जी पर निर्भर रहने के बजाय मानवीय कारणों, तर्क और सबूतों पर जोर दिया। उनका रवैया अक्सर संदेहवादी था और धर्म के मामलों में उस जमाने के हिसाब से काफी आलोचनात्मक भी।
और दूसरी खासियत शायद उनकी लिखने की शैली है। मैंने सुना है काफी साहित्यिक अंदाज है उनका, पढ़ने में मजा आता है।
हाँ बिल्कुल, उनकी भाषा बहुत सधी हुई है, व्यंग्यात्मक भी है कहीं कहीं और प्रवाहपूर्ण है। वो सिर्फ तथ्य नहीं बताते बल्कि जैसे कहानी बुनते हैं। और तीसरी बात, वो उस ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक थे जो उस समय तेजी से फैल रहा था।
हाँ ये भी एक पहलू है।
तो शाही शक्ति, महत्वाकांक्षा और उसके संभावित पतन के विचार उनके जहन में ताज़ा थे। इसने उन्हें रोम के पतन को एक अलग, एक चेतावनी भरी नज़र से देखने में मदद की।
ये तो बहुत दिलचस्प है। तो अब आते हैं इस विशाल किताब पर। आखिर ये कहानी है किस बारे में? इसका मतलब मूल विचार क्या है?
देखिए, ये किताब रोमन साम्राज्य के लगभग 13 सदियों के इतिहास को समेटती है। दूसरी शताब्दी ईस्वी में, जब साम्राज्य अपने चरम पर था, वहां से लेकर 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज का इस्तांबुल है, उसके पतन तक।
13 सदियां।
हाँ, और ये सिर्फ लड़ाइयों और सम्राटों का इतिहास नहीं है, ये पूरी प्राचीन दुनिया के मध्ययुगीन दुनिया में बदलने की कहानी है। समाज, संस्कृति, कानून, धर्म, सब कुछ इसमें शामिल है।
13 सदियां, ये तो वाकई बहुत बड़ा कैनवस है। तो गिबन का मुख्य तर्क क्या था इस लंबे पतन के पीछे? कोई एक वजह बताई उन्होंने?
गिबन का केंद्रीय विचार ये है कि रोम का पतन कोई एक घटना नहीं थी, ये एक धीमी, सदियों तक चलने वाली प्रक्रिया थी। उनके अनुसार इसके कई कारण थे, लेकिन दो मुख्य थे।
अच्छा, कौन से?
पहला, रोमन नागरिकों में सिविक वर्च्यू यानी नागरिक सद्गुण, मतलब देश के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण, और मार्शल स्पिरिट यानी युद्धक भावना का धीरे धीरे खत्म हो जाना। और दूसरा, जिसे वो विवादास्पद रूप से बर्बरता और धर्म, बारबेरिज्म एंड रिलीजन का प्रभाव कहते हैं, मतलब बाहरी हमले और ईसाई धर्म का उदय।
यानी वो ये कह रहे थे कि साम्राज्य अपनी ही विशालता और सफलता के बोझ तले दब गया, जिसे उन्होंने इमॉडरेट ग्रेटनेस कहा था, है ना?
बिल्कुल सही। गिबन का तर्क है कि रोम की अत्यधिक महानता, उसका विशाल आकार, बेहिसाब दौलत और ताकत ने ही विरोधाभासी रूप से अपने पतन के बीज बो दिए। इससे नैतिक भ्रष्टाचार बढ़ा, राजनीतिक अस्थिरता आई और सेना कमजोर हुई, और फिर ईसाई धर्म के उदय और भारी कबीलों के लगातार हमलों ने इस अंदरूनी कमजोरी का आप कहिए फायदा उठाया।
ये समझना जरूरी है कि ये किताब बहुत बड़ी है, 6 खंड और 71 अध्याय, तो हम हर अध्याय पर तो बात नहीं कर सकते जाहिर है, लेकिन गिबन की कहानी को समझने के लिए क्या हम इसे मोटे तौर पर कुछ चरणों में बांट सकते?
हाँ, ये एक अच्छा तरीका है इस लंबी यात्रा को समझने का। पहला चरण है साम्राज्य का शिखर और पहली दरारें, लगभग 98 से 284 ईस्वी। ये वो दौर है जिसे गिबन ने मानव इतिहास का सबसे सुखद समय कहा, खासकर मार्कस ऑरेलियस जैसे अच्छे सम्राटों का युग। साम्राज्य विशाल, समृद्ध और स्थिर लगता था।
लेकिन क्या सब कुछ बिल्कुल ठीक था, या गिबन यहीं कुछ कमजोरियों की तरफ इशारा करते हैं? कुछ मतलब अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था?
बिल्कुल, गिबन यहीं पर खतरे की घंटियां पहचान लेते हैं, जैसे सम्राट चुनने का कोई पक्का संवैधानिक तरीका नहीं था। इससे अक्सर गृह युद्ध होते थे, सेना, खासकर रोम की जो प्रिटोरियन गार्ड थी, वो बहुत ताकतवर हो गई थी। और सबसे अहम, नागरिकों में वो पुराना रोमन जज्बा, वो वर्टस यानी साहस, अनुशासन, देश के लिए मर मिटने का जज्बा, वो कम हो रहा था। लोग आराम पसंद हो रहे थे। मार्कस ऑरेलियस के बाद जब उसका नालायक बेटा कॉमोडस आया, तो ये पतन तेजी से शुरू हुआ और 3री सदी का भयानक संकट आया। राजनैतिक अस्थिरता, आर्थिक पतन, युद्ध।
अच्छा, तो शिखर पर ही पतन के बीच दिखने लगे थे। अब आता है दूसरा चरण, पुनर्गठन और ईसाई धर्म का उदय, लगभग 284 से 395 ईस्वी। इस दौर में तो साम्राज्य को बचाने की कोशिशें हुई है ना, जैसे डायोक्लेशियन और कॉन्स्टेंटाइन के सुधार।
हाँ बिल्कुल, इन सम्राटों ने साम्राज्य को अस्थायी रूप से स्थिर किया। डायोक्लेशियन ने प्रशासन को बांटा, जिसे टेट्रार्की कहते हैं, 4 लोगों का शासन। कॉन्स्टेंटाइन ने नई राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल बसाई, और सबसे बड़ा बदलाव, ईसाई धर्म को अपनाया और उसे बढ़ावा दिया।
हाँ, कॉन्स्टेंटाइन और ईसाई धर्म।
लेकिन गिबन यहाँ ईसाई धर्म के उदर पर बहुत विस्तार से लिखते हैं, और ये उनके काम का सबसे विवादास्पद हिस्सा है।
विवादास्पद क्यों? ऐसा क्या कहा उन्होंने?
देखिए, गिबन ईसाई धर्म को एक ऐतिहासिक ताकत के रूप में देखते हैं, उसकी सफलता का विश्लेषण करते हैं, लेकिन उनका तर्क यह है कि इसके परलोक पर ज्यादा जोर देने, अंदरूनी धार्मिक झगड़ों और इसकी जो शांतिवादी शिक्षाएं थीं, उन्होंने रोमन राज्य के पारंपरिक सैन्य और राजनीतिक ढांचे को कमजोर किया।
अच्छा,
मतलब उनका मानना था कि इसने लोगों का ध्यान राज्य की सेवा से हटा दिया। हाँ, कुछ ऐसा ही कि ध्यान राज्य की सेवा से हटाकर चर्च की तरफ मोड़ दिया। ये नजरिया, देखिए, आज भी बहस का विषय है, पर यह गिबन के विश्लेषण का एक अहम हिस्सा था, और ये दौर थियोडोसियस की मौत के बाद साम्राज्य के स्थायी रूप से पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बंटने के साथ खत्म होता है।
इसके बाद आता है वो दौर जिसे हम अक्सर रोम का पतन कहते हैं, तीसरा चरण, पश्चिमी साम्राज्य का पतन, लगभग 395 से 476 ईस्वी। इसमें तो वो बर्बर आक्रमणों की कहानी है ना?
विसिगोथ, वैंडल।
हाँ,
इस दौर में विसिगोथ, वैंडल, हूण जैसे कई समूहों के हमले होते हैं। रोम शहर 2 बार लूटा जाता है, लेकिन गिबन का मुख्य बिंदु यहाँ ये नहीं है कि ये बर्बर कितने ताकतवर थे। उनका तर्क है कि पश्चिमी साम्राज्य इसलिए गिरा क्योंकि वो अंदर से खोखला हो चुका था।
अंदर से खोखला? कैसे?
सेना में भरोसेमंद रोमन सैनिकों की जगह बर्बर भाड़े के सैनिक भर गए थे, जिनका रोम से कोई लगाव नहीं था। नेतृत्व कमजोर और बटा हुआ था, अर्थव्यवस्था तबाह थी, और आम लोगों में अपनी रक्षा करने की इच्छा, वो जज्बा, खत्म हो गया था। तो 476 में जब आखिरी पश्चिमी सम्राट रोमुलस ऑगस्टुलस को हटाया गया, तो गिबन के लिए ये कोई बड़ा नाटकीय अंत नहीं था, बल्कि एक लंबी बीमारी का आखिरी सांस लेना था, मतलब लगभग एक फीका सा अंत।
तो पश्चिम गिर गया, लेकिन पूर्व तो बच गया। चौथा चरण, पूर्व का अस्तित्व और जस्टिनियन का युग, लगभग 476 से 641 ईस्वी। अब कहानी कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचती है, यानी बाइजेंटियन साम्राज्य।
बिल्कुल, पश्चिमी साम्राज्य के गिरने के बाद भी पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बाइजेंटियन साम्राज्य कहते हैं, वो सदियों तक कायम रहा। इस चरण में सम्राट जस्टिनियन का दौर बहुत अहम है। उन्होंने रोमन कानूनों का प्रसिद्ध संग्रह कॉर्पस जूरिस सिविलिस बनवाया, शानदार हागिया सोफिया चर्च बनवाया।
हाँ, हागिया सोफिया तो आज भी है
जी।
और उसने इटली, उत्तरी अफ्रीका जैसे खोए हुए पश्चिमी इलाके जीतने की महत्वाकांक्षी कोशिश भी की। उसके जनरल बेलिसारियस और नारसिस काफी प्रतिभाशाली थे।
तो ये तो अच्छी बात लगती है, साम्राज्य को फिर से खड़ा करने की कोशिश। इसने क्या चेतावनी थी?
हाँ, कोशिश तो अच्छी थी, लेकिन गिवन यहाँ भी एक चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि जस्टिनियन की ये जीतें बहुत महंगी साबित हुई। इन युद्धों ने साम्राज्य का खजाना खाली कर दिया और उसे लंबे समय के लिए कमजोर बना दिया।
ओह,
और इसी दौर के अंत में एक नई विश्व शक्ति का उदय होता है, अरब में इस्लाम का उदय। गिवन इसका भी विस्तृत वर्णन करते हैं कि कैसे शुरुआती मुस्लिम सेनाओं ने कमजोर बाइजेंटाइन और फारसी साम्राज्यों से सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका जैसे बड़े इलाके तेजी से जीत लिए।
यानी एक तरफ पुनर्निर्माण की कोशिश, दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई और ताकतवर चुनौती। अब पांचवा चरण, बाइजेंटाइन पतन का लंबा सहस्राब्दी, लगभग 641 से 1204 ईस्वी। ये तो बहुत लंबा समय, हजार साल लगभग।
बहुत लंबा। इस दौर में बाइजेंटाइन साम्राज्य धीरे धीरे सिकुड़ता गया, लगातार अरबों, बल्गेरियाई और फिर तुर्कों से लड़ता रहा। गिबन बाइजेंटियम को एक ऐसी सभ्यता के रूप में देखते हैं जो पुराने ज्ञान को सहेज कर तो रखती थी, लेकिन उसमें प्राचीन रोम जैसी नई ऊर्जा और गतिशीलता की कमी थी। वो रुकी हुई सी लगती थी।
और अंदरूनी झगड़े भी थे शायद?
बिल्कुल, वो अंदरूनी धार्मिक विवादों जैसे आइकोनोक्लाज्म, यानी धार्मिक छवियों या मूर्तियों को लेकर जो विवाद था, उसका भी जिक्र करते हैं, जिन्हें वो व्यर्थ का झगड़ा मानते थे। और इसी दौर में रोम के कैथोलिक चर्च और कॉन्स्टेंटिनोपल के ऑर्थोडॉक्स चर्च के बीच दरार और गहरी होती गई।
और इस लंबे दौर का अंत भी बड़ा दुखद है, चौथा क्रूसेड 1204, जब पश्चिमी ईसाई शूरवीरों ने मुसलमानों से लड़ने की बजाय कॉन्स्टेंटिनोपल को ही लूट लिया, अपने ही साथी ईसाइयों को।
गिबन इसे एक भयानक विश्वासघात मानते हैं, एक ऐसी घटना जिसने बाइजेंटाइन साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी। और यहीं से शुरू होता है छठा और अंतिम चरण, अंतिम पतन, लगभग 1204 से 1453 ईस्वी।
अब तो बस अंत नजदीक है, साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें ले रहा था।
हाँ, 1204 की लूट के बाद बाइजेंटाइन साम्राज्य बदनाम कर रह गया था, टुकड़ों में बटा हुआ, कमजोर। और फिर उदय होता है ओटोमन तुर्कों का, एक नई बहुत ताकतवर शक्ति का, जो धीरे धीरे बचे खुचे बाइजेंटाइन इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं।
और फिर आता है 1453।
जी, कहानी अपने आखिरी भव्य और दुखद मोड़ पर पहुंचती है 1453 में, जब ओटोमन सुल्तान मेहमेद द्वितीय कॉन्स्टेंटिनोपल की अंतिम घेराबंदी करते हैं। गिबन शहर की रक्षा और आखिरी बाइजेंटाइन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 11th पैलियोलोगोस के वीरतापूर्ण लेकिन असफल प्रतिरोध का बहुत रोमांचक और मार्मिक वर्णन करते हैं। शहर के पतन के साथ ही रोमन साम्राज्य का उसकी नींव रखे जाने के लगभग 1500 साल बाद निश्चित अंत हो जाता है।
वाओ, 13 सदियों की कहानी, उसको इतने संक्षेप में समेटना भी एक चुनौती है। इस पूरी कहानी से, गिबन के इस विश्लेषण से, कुछ मुख्य विषय या संदेश क्या निकलते हैं जिन पर हमें, मतलब आज के दौर में, सोचना चाहिए?
कई गहरे संदेश हैं इसमें। पहला और शायद सबसे केंद्रीय है नागरिक सद्गुण और युद्धक क्षमता का पतन। गिबन का मानना था कि रोम की असली ताकत उसके नागरिकों के चरित्र में थी, वो साहस, अनुशासन, देश के प्रति कर्तव्य की भावना, जिसे वो वर्टस कहते थे। जब ये चीजें खत्म हो गईं, जब लोग आराम पसंद हो गए, सेना में जाने से कतराने लगे, सार्वजनिक जीवन से उदासीन हो गए, तब पतन निश्चित हो गया।
ये बात तो आज भी सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम अपने समाज में नागरिक कर्तव्यों के प्रति वैसी ही उदासीनता नहीं देखते कभी कभी? मतलब ये काफी प्रासंगिक लगता है। खैर, दूसरा मुख्य संदेश क्या था?
दूसरा, और जैसा हमने पहले कहा, विवादास्पद, ईसाई धर्म का प्रभाव। गिबन का तर्क था कि ईसाई धर्म ने लोगों का ध्यान इस दुनिया की समस्याओं से हटाकर परलोक पर केंद्रित कर दिया। उसके सिखाए गुण जैसे विनम्रता, धैर्य, वो रोम की पारंपरिक सक्रिय जुझारू भावना से अलग थे। और हाँ, अंतहीन और हिंसक धार्मिक झगड़ों ने समाज को बांटा। फिर से याद दिला दूं, ये गिबन का विश्लेषण है जिस पर बहुत बहस हुई है, लेकिन उनके तर्क का ये एक अहम हिस्सा है।
समझ गई। तीसरा शायद बाहरी हमलों से जुड़ा है, वो बर्बरता वाला बिंदु।
हाँ, तीसरा है बर्बरता की चुनौती। लेकिन गिबन इन्हें सिर्फ हमलावर नहीं मानते, वो दिखाते हैं कि कैसे रोम ने इन्हीं बर्बरों को अपनी सेना में भर्ती किया, उन पर निर्भर हो गया। ये बाहरी ताकतें तभी घातक साबित हुईं जब रोम अंदर से कमजोर हो चुका था, उन्होंने बस उस कमजोरी का फायदा उठाया, वो अवसरवादी थे।
और चौथा, वो अत्यधिक महानता वाला बिंदु कि सफलता ही दुश्मन बन गई।
बिल्कुल, चौथा अत्यधिक महानता और उसके अपने विरोधाभास। साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि उसे संभालना ही मुश्किल हो गया। विशाल नौकरशाही, महंगी सेना, भ्रष्टाचार, दूर दराज के इलाकों पर नियंत्रण रखने में मुश्किल, ये सब उसी महानता के साइड इफेक्ट्स थे। गिबन दिखाते हैं कि कैसे सफलता ही अपनी सीमाएं तय कर देती है। मतलब रोम अपने ही भार के नीचे ढह गया।
गिबन की भाषा और शैली की भी हमने बात की, क्या उनकी कुछ खास पंक्तियां या विचार हैं जो उनके दृष्टिकोण को बिल्कुल साफ कर देती हैं?
हाँ हाँ, उनकी लेखनी में बहुत सी यादगार पंक्तियां हैं। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध है, थोड़ी निराशावादी जरूर है, इतिहास वास्तव में मानव जाति के अपराधों, मूर्खताओं और दुर्भाग्य का लेखा जोखा मात्र है।
ओ, ये तो काफी तीखी टिप्पणी है।
जी, ये दिखाता है कि वो इतिहास को किसी सुनहरी कहानी की तरह नहीं देखते, बल्कि इंसानी कमजोरियों का एक यथार्थवादी चित्रण मानते हैं। प्रगति की कोई सीधी रेखा नहीं देखते वो।
और वो दूसरी पंक्ति जो आपने बताई थी, जो उनके मुख्य तर्क को समेटती है?
हाँ, वो शायद सबसे मशहूर है। किताब के अंत में मैंने बर्बरता और धर्म की विजय का वर्णन किया है। यून के दो आयामी थीसिस का सार है, बाहरी बर्बर हमले और ईसाई धर्म के उदय से हुआ आंतरिक क्षय।
और कोई विचार जो उनकी सोच दर्शाता हो?
एक ये भी है जो फिर से उसी अत्यधिक महानता वाले विचार पर जोर देता है। रोम का पतन अत्यधिक महानता का प्राकृतिक और अनिवार्य प्रभाव था। मतलब सफलता में ही विफलता के बीज थे। विशालता ने ही ऐसी चुनौतियां पैदा की जिनका समाधान नहीं हो सका। ये बाहरी चीज कम, अंदरूनी ज्यादा थी।
ये सब हजारों साल पुरानी बातें हैं एक दूर देश के साम्राज्य की, लेकिन क्या आज हम अपने जीवन में इनसे कुछ सीख सकते हैं? क्या इनके कोई वास्तविक जीवन अनुप्रयोग हैं?
बिल्कुल हैं, और शायद आज पहले से ज्यादा प्रासंगिक है। पहला सबक है आत्मसंतोष का खतरा। रोम का पतन तब शुरू हुआ जब वो अपने शिखर पर था। सफलता और समृद्धि अक्सर हमें लापरवाह बना देती है, अनुशासन ढीला पड़ जाता है। ये किसी भी देश, किसी भी कंपनी या यहां तक कि व्यक्ति के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि सफलता को स्थायी न समझें, हमेशा चौकस रहें।
ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, शायद मजबूत संस्थाओं का महत्व।
हाँ बिल्कुल, मजबूत संस्थाओं का महत्व। गिबन दिखाते हैं कि कैसे रोमन राजनीतिक संस्थाएं, जैसे उत्तराधिकार के नियम, सीनेट की भूमिका, जब कमजोर हुई तो सीधे अस्थिरता और गृहयुद्ध बढ़े। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी समाज के स्थिर विकास के लिए कानून का शासन, पारदर्शी व्यवस्थाएं और जवाबदेही कितनी जरूरी हैं। संस्थाएं ही समाज को जोड़े रखती हैं।
तीसरा है शायद अंदरूनी एकजुटता और बाहरी खतरों के बीच का संतुलन।
अंदरूनी फूट हो सकती है, राजनैतिक झगड़े, सामाजिक बंटवारा, आर्थिक असमानता, जैसा गिबन ने धार्मिक विवादों में देखा, ये सब किसी भी समाज को अंदर से कमजोर करते हैं और भारी चुनौतियों का सामना करने लायक नहीं छोड़ते।
चौथा, शायद ये कि बड़े बदलाव धीरे धीरे होते हैं, हमें लंबे समय के बारे में सोचना चाहिए।
हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक परिवर्तन की धीमी प्रकृति। रोम एक दिन में नहीं गिरा, ये सदियों की प्रक्रिया थी। यह हमें याद दिलाता है कि हमें सिर्फ आज के संकटों पर नहीं, बल्कि लंबे समय के रुझानों पर भी ध्यान देना चाहिए, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, आर्थिक असमानता हो या कोई और बड़ी सामाजिक चुनौती। अगर इन्हें नजरअंदाज किया जाए तो ये धीरे धीरे समाज की नींव को खोखला कर सकती हैं।
और पांचवा,
हमें अपने समय की प्रभावी विचारधाराओं की भी आलोचनात्मक जांच करनी चाहिए। गिबन ने अपने समय में ईसाई धर्म का विश्लेषण किया, चाहे वो विवादास्पद ही क्यों न रहा हो। हमें भी सोचना चाहिए कि आज की प्रमुख विचारधाराएं, चाहे वो राजनीतिक हों, आर्थिक हों या धार्मिक, समाज को कैसे प्रभावित कर रही हैं। क्या वो हमें समस्याओं का समाधान करने में मदद कर रही हैं या कहीं बाधा तो नहीं डाल रही?
तो इस पूरी गहन बातचीत का सार क्या है? अगर श्रोताओं को एक या दो मुख्य बातें याद रखनी हो इस किताब और गिबन के विचारों से, तो वो क्या होंगी?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि गिबन के अनुसार महान सभ्यताएं बाहरी ताकतों से कम, अपनी अंदरूनी कमजोरियों से ज्यादा मरती हैं। वो एक तरह से आत्महत्या करती हैं। बाहरी हमले तो बस ताबूत में आखिरी कील साबित होते हैं, असली लड़ाई तो अंदर ही लड़ी और हारी जाती है। गिबन का काम हमें इतिहास की जटिलता और इंसानी महत्वाकांक्षाओं और यहां तक कि इंसानी रचनाओं की नाजुकता का एहसास कराता है।
और ये भी कि पतन अक्सर सफलता के गर्भ से ही जन्म लेता है ना, जब नागरिक अपने कर्तव्यों को भूलकर सिर्फ अधिकारों और आराम की बात करने लगते हैं, जब समाज का साझा उद्देश्य धुंधला पड़ जाता है, तब खतरा बढ़ जाता है। गिबन का काम सिर्फ इतिहास नहीं है, ये मानव स्वभाव पर, मानवीय मूर्खताओं पर भी एक कालातीत टिप्पणी है।
बिल्कुल, और इसकी खासियत सिर्फ इसके ऐतिहासिक विश्लेषण में नहीं बल्कि इसकी शानदार भाषा और साहित्यिक शैली में भी है। ये पढ़ना हमेशा आसान नहीं होता, भाषा थोड़ी जटिल है, लेकिन ये इतिहास लेखन की एक मिसाल है। शायद सबसे बड़ा सवाल जो गिबन हमारे लिए छोड़ जाते हैं वो ये है, क्या हम अपने समय की अंदरूनी कमजोरियों को पहचान पा रहे हैं और क्या हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं, या हम भी इतिहास के दोहराव का इंतजार कर रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।